नमस्कार श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 8:25 हुए हैं। इन दिनों हम कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध उपन्यास मित्रों मरजानी के कुछ अंक लेकर आपके सामने आ रहे हैं। श्रोताओं, अगर ये उपन्यास आपको अच्छा लगता है तो हमें कृपया करके अपना रेस्पॉन्स दें ताकि हम इस उपन्यास के पॉडकास्ट को जारी रख सकें। आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और वहां भी आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9680615806। अब तक हमने मित्रों मरजानी के 2 अंक पॉडकास्ट कर दिए हैं, उनको अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपका फीडबैक आता है तो हम किसी दूसरे सब्जेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो पिछले 2 अंकों तक हमने ये जाना कि गुरदास की जो मझली बहू है मित्रों, वो कैसे अपने ससुर और पूरे परिवार को चकमा दे करके और वहां से उठ करके जाती है। आज 3 अंक में उससे आगे का, तो अब उससे आगे का, बूढ़े ससुर की आंखों में धूल झोंक, हरमन प्यारी बालों की लड़की मन ही मन हंसी, फिर सास जिठानी जेठ और घरवाले पर नैनू की तिरछी कटारियां चला कमरे से बाहर हो गई। दिन भर मंडी में भटका भटका बनवारी लाल घर आया तो रका भी लिए सुहाग ससुर को दाल दलिया खिलाने जाती थी। माथे का कपड़ा आंखों पर खींच लिया और पास खड़े हो बापू को खिलाया पिलाया, बर्तन उठा कुल्ला करवाया, फिर पल्ले के छोर से किशमिश मुनके के दाने निकाल ससुर के आगे कर दिए। गुरुदास ने आशीष दिया, जीती रहो बेटी, सुखी रहो। बहू दहलीज तक पहुंची तो फिर से टेकर कहा, सुहागवंती बेटी, तेरी सयानफ का क्या मूल्य, तेरे सास ससुर ने तुझे पाने को जरूर पिछले जन्म कोई अच्छा कर्म किया होगा। ससुर की बड़ाई से हल्की फूल सुहागवंती चौके की ओर निकल गई। तो भी गुरुदास पड़े पड़े सोचते रहे, घर गृहस्थी के जंजाल में भी मनुख घाटे में नहीं रहता, इस माया में लाख दुख सोग, पर फिर इसी की खट्टी कमाई बुढ़ापे में काम आती है। बहू को ही देखो, कहाँ की बेटी, कहाँ जन्मी पली और ब्याह कर किन बूढ़ों की सेवा में जुटी है। सहसा बेटी जनकों की सूरत आंखों में घूम गई। कल इस अंगना डोलती फिरती थी, आज किसी दूजे घर का चिराग बनी बैठी है। गुरदास का दिल ऐसा उमड़ा कि उड़कर जाए और अपनी लाडली की घर गृहस्थी देख आए। गए सयाले के बाद तो बेटी को बुलावा ही नहीं गया, समझी क्या सोचते होंगे। धनवंती अंदर आई तो कहा, भगवान, बहु बेटों में तुम ऐसी डूबी हो कि लड़की बेचारी की सुदबुद्ध ही नहीं। धनवंती किवाड़ भिड़ा चारपाई पर लेट गई और थकी सी बोली, जनकों की चिट्ठी आई है, बैसाख में लड़के के मुंडन है। सुनकर गुरदास मानो अपनी प्यारी बेटी को ही पा गए हों। लाड से कहा, धनवंती, भगवान की दया से उनके घर का पहला पोता जनकों की गोद पड़ा है, जरा ढंग का सामान जुटाना। सोच में डूबी धनवंती लेटी लेटी उठ बैठी। बनवारी लाल बड़े फिक्रों में है, मंडी का देना 4-6 दिन में न चुकाया तो। गुरदास के मुख पर से चाव भरी हंसी पल छिन में गायब हो गई। सहमी सहमी आंखों घरवाली को देखते रहे, फिर मानो अपने को तसल्ली देने को कहा, छोटी सी बात को बड़ी बनाकर कहने की तेरी पुरानी आदत, जो मंडी का व्यापार करेगा उसी के सिर देना भी चढ़ेगा और उसी की हथेली के जोर से उतरेगा भी। धनवंती ने सिर हिलाया, न न न, लड़के का मुंह माथा देख ये न कह सकोगे, मारे फिक्र के उसकी तो भूख प्यास सूखी है। गुरदास खांसते खांसते उठ बैठे। बूढ़े बाप ने चारपाई क्या पकड़ी, नालायकों ने सब चौपट कर दिया। धनवंती ने हाथ से रोक दिया, शुभ शुभ बोलो, ऐसी वाक वाणिया न करो, दुनिया क्या कभी देनदार नहीं होती। गुरदास झुंझलाए, सीख न दे भली मानस, लड़के को आवाज दे, इस बूढ़े बाप से उन्हें अब क्या पूछना ताछना। धनवंती बनवारी को बुलाने गई तो घंटे भर नहीं लौटी। गुरदास पड़े पड़े राह तकते रहे और तकते तकते आंखों में नींद उतर आई। सुहाग के बुलाए बनवारी लाल चौके में आया तो पाटिए पर बैठी धनवंती रोटी सेक रही थी। हल्की आंच फूल डाल खुला घी लगाया और बहू से कहा, बेटे को कुछ खांड शक्कर दे। न न न माँ, आज घी शक्कर पर दिल नहीं। अरे बेटा, इन छोटे मोटे फिक्रों से क्या फाका करने लगे, उठ बहू, घी शक्कर वाला लुकमा तोड़। बनवारी ने मुंह में डाला तो मीठी सौंधी गंध से भूख चमक उठी। माथे के तेवर ढीले पड़े और मुंह ही मुंह स्वाद ले कहा, सुहाग, मीठी रोटियां तो बस अपनी माँ की। सास की ओर देख सुहाग मुस्कुराई, सच ही तो है, जो छुटके से बच्चे को खिला पिला पूरा जना बना दे, उस माँ की रोटी की क्या कोई कम महिमा। धनवंती जी भर भर खुश हुई। पर झूठ मूठ का गुस्सा जता बनवारी की ओर, ताका बलिहारी तेरी अकल पर सुहागवंती, मेरे ही बेटे को नजर लगाने चली। बनवारी ने भीनी आंख घरवाली पर डाली और उठते उठते कहा, सुहाग तुक सरदारी को तो हांक देना। सुहाग देवर के दरवाजे पर पहुंची तो देवरानी को सजते बनते देख ठिठक गई। कासनी फूल पत्तों वाला सोख गुलाबी जोड़ा पहने मजली बालों में कंघा घुमाती थी। मित्रों ने पलट नई की ओर देखा और घूर कर कहा, लड़का बाला अभी तुम्हारी झोली नहीं, पर हो गई हो सास से भी अव्वल। बित्ते भर का यह तेरा वजूद जिठानी पर अकल आंख ऐसी चौकस कि मजाल कुछ भी चूक जाए। फिर नाक चढ़ा कहा, सज संवर प्रीतम को मिलने जाती थी कि बीच में महारानी आन पहुंची। बहना मैं तो तेरे जेठ के कहे सरदारी लाल को बुलाने आई थी, देवर क्या अभी लौटा नहीं? मंझली ने कलेजे पर हाथ रख लिया। रात उतरते देवर तुम्हारा घर आन पहुंचे तो जान लो जिठानी उस दिन आसमानी गोला उगा पश्चिम से। तुम क्या समझती थी देवर तुम्हारा इस झोली में लुका बैठा होगा? अरे मेरी सयानी जिठानी, वह तो भागता फिरता होगा वैद्य हकीमों के यहाँ। सुहाग ने झिड़की दिया, चुपरी। मंझली ने खड़े खड़े मांग निकाली, दोनों ओर चिड़िया तोते बिठाए, चुटिया गूंथ परांदा डाला, फिर पिटारी से इतरा फुलेल की सीसी निकाल बोली, कुछ नरम गरम हो तो कहो जिठानी, तुम्हें भी फोहे का टोटका दे दूं। सुहाग ने माथे पर हाथ रख धिक्कारा, हर घड़ी की मस्करी अच्छी नहीं। मंझली तेरे जेठ ने पूरी बात तो नहीं बताई, पर इतना जान ले इन भाइयों के सिर मंडी का चोखा देना चढ़ा है। मंझली मुड़ी नहीं, लापरवाही से हाथ हिलाया, मेरे चहेते जेठ की महारानी जिस पर जो चढ़ा है चढ़ा रहे, मुझ पर तो सिंगों वाला भूत चढ़ा है। जाते जाते सुहाग ने सिर हिला कहा, तुम्हारे कहे का बुरा नहीं मानती, पर जी में बड़ा दुख पाती हूँ। देने वाले ने कैसा तो रूप दिया और कैसी दे दी मत। मंझली ने जिठानी का पल्ला पकड़ लिया, मित्रों ने हाथ जोड़ दिए, बस अब खुलासा कहो मर्दों पर क्या बन आई है। सुहाग ने जाते जाते कहा, जितना जानती थी कह चुकी, बाकी पूछना सरदारी से। जिठाने के बाहर गए पीछे मित्रों खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही, फिर दर्पण में मुखड़ा देखा, सिर की ओढ़नी उतार बाहें फैला मुस्करा दी। अनोखी रीत इस देह तन की, बूंद पड़े तो थोड़ी न पड़े तो थोड़ी। आज भड़वा बनवारी ही जो बनाव सिंगार देखता, जाने किन कार करतुतों में पड़ा शहर की धूल फांकता है। साध लिए मन में मित्रों जोड़ा उतारने को हुई कि जैसे किसी ने हाथ रोक लिया। बनी ठनी हूँ तो क्या किसी की चोरी है? नखरे से दोबारा ओढ़नी ओढ़ ली और सासू से मुठभेड़ करने चौके की ओर चली। फूलवंती के दरवाजे के आगे निकली तो छेड़खानी सूझी, झांक कर आवाज दी, आज तो फूलवंती तू बड़े रंगों में, तेरी तो ताजी ताजी इलायची दाने वाली माला घड़कर आई है। फूलवंती ने दांत तले जीभ दबा ली, बैरिन कहां से पता पा गई। हाथ का कसीदा छोड़ दहलीज पर आन खड़ी हुई, तुम्हारा ही मुंह मुबारक हो जिठानी, इलायची दाने की कौन कहे, इस घर तो फटा छल्ला भी दवाल नहीं। मंझली कुल्ले मटका हंस दी, वाहरी बहन फरेबवंती, इस कलयुग में तो पूजा ही गोड़ गड़ंत की, तो तू ही क्यों सच बोले, छटकी माला तो तेरी चोर पिटारी में और सास जिठानी को यह चकमा। तू हजार ताते चश्म देवरानी, पर औरत की जून पड़ गहना गट्टा संभालने की विद्या किसे नहीं आती। अरे जादू के जोर तू माला कलेजे में भी छिपा ले तो भी उसे देख लेने का मंत्रा मित्रों के पास है। सुनकर फूला को जग जहान भूल गया, फिर इस डर से कि जिठानी सचमुच ही न समझ ले कि पछाड़ खा गई हूँ, बाहर निकल आई और मित्रों के पीछे पीछे रसोई की ओर चली। मित्रों चौके में जा बैठी और सास को सुनाकर बोली, माँ जी बेचारी फूलावंती पर बरी बन आई है, चाव चाव गहना घटा गढ़वा जो अभागिन दसमनुष के डर से अंग न छू सके। धनवंती जो पहले ही गुलजारी और उसकी घरवाली से जली भुनी बैठी थी, चूल्हे में फूंक मार रुखाई से बोली, मंझली बहू मैं गहने गट्टे को नहीं हिलाती हूँ, पर जो घरवालों को बैरी समझने लगे उस भाग मरी के गहने भी क्या फले फूलेंगे। फूलावंती मुंह जोर जिठानी से डरती थी, पर सास की बात सुनकर न रह सकी, त्योरी चढ़ा बोली, फूले फले वे जिनका इस घर हुक्म हासिल है, जिन हम जैसों के भाग ही खोटे हों, जो अभागे सबसे छोटे हों, उनका तो प्रभु ही वाली। दिन भर चूल्हा चौका झोंक, शाम को बची खुची रोटियां, इतना ही है न। धनवंती ने हाथ मल मल लिए, डर कर बहू कोई ऊपर भी देखने वाला है। फिर मित्रों की ओर मुड़कर कहा, मंझली बहू मैं तो नाते से ही बुरी इसकी सास ठहरी, पर तू मेरी सौंह खाकर कह दे इस नाजो को इस रसोई घर की राह डगर भी पता है। मंझली ने टिटकारी भरी, पलंग पर बैठे बिठाए जिसे चंगा चोसा मिल जाए माँ जी, वह निगोड़ी चौके में क्यों मुंह मारने आएगी। फुलावंती सर मार मार उछली, ठीक कहती हो माँ जी, ठीक ही। इस चौके में मेरी क्या पूछ, पूछ है उनकी जिनके खसम मेहनत से कमाते हैं, महीने में 10 बार गफे लाते हैं। सास की कच्ची होते देख मजली का दिल पिघला, बाह से खींच फुलावंती को पास बिठला लिया और ठुड्डी छू बोली, मेरी बेलगामी देवरानी, काहे झूठ बोलती हरी, मैं क्या बेली सुनार को नहीं जानती, उससे गहने गढ़ा गढ़ा तूने उसकी दुकान आधी कर दी। पर यह तो कह भोली फरेवन, तेरा सैया कहाँ से इतना कमाता लाता है। गाली सुन फूला की आंखों में अंगारे बरसने लगे, कहा देवर तुम्हारा कहीं सेंध लगाता हो, डाके डालता हो, सो जाने उसके माँ बाप और भाई भौजाई। फिर चढ़े माथे वाली सास की ओर ध्यान गया तो आगे जोड़ा जेवर गहने की जो पूछो, तो जो जो पीहर से पाती हूँ जोड़ बंद कर उसी से कुछ न कुछ गढ़वा लेती हूँ। मंजली कुछ कहने जाती थी कि चौके के बाहर घरवाले को खड़ा देख मुस्कुराई और फुलावंती के सिर का घूंघट नीचे खींच बोली, अरे देवरानी कुछ होश कर, जेठ खड़ा है, लाख तुझसे गोरी चिट्टी हूँ पर तेरे इस सुरमेदानी दिल की क्या खबर, अपने जेठ से ही लगा बैठे। सरदारी ने सुना अनसुना कर तीखे गले कहा, अम्मा गुलजारी ने जो गुल खिलाया है। फूला के कान खड़े हुए। मजली ने शरारत भरी चितवन से सरदारी की ओर देखा और हंसकर कहा, जब तक मेरी फुलावंती को फूल नहीं पड़ता तब तक क्यों न देवर गुलजारी ही गुल खिलाए। धनवंती ने मानो बहू की बात ही न सुनी हो सहमी सी बेटे से पूछा, बेटा मुझे पहेलियां न बुझा, ठीक ठीक कह, अम्मा तुम्हारा छोटा बेटा बनवारी के नाम मंडी से रुपया उगाता रहा है और एक फूटी कोड़ी दुकान में जमा नहीं करवाई। सुनकर धनवंती की आंखें फैल गई। मंजली फूला को कोई करारी बोली मारने को थी कि उस शिष की सुन अचरज में आ गई, क्या हुआ लाडो। फुलावंती माथे पर हाथ मार मार रोने लगी, हम बेचारे किसी को नहीं सुहाते, इस घर हमारा कोई हिस्सा हक नहीं तो हमारी छपरी अलग कर दो, बन आएगी तो कमा कर रूखी सूखी खा लेंगे, न होगा तो मसानों में जा सोएंगे। मंजली ने पुचकारा, न रो फुलावंती न रो, अरे ये कोई थाना मुंशिफ नहीं, तेरा जेठ है जेठ। फुलावंती तड़प उठी, थाने मुंशिफ गले पड़े उनके जिन्होंने किसी की कमाई मारी हो, कोई गुनाह किया हो, आदत में जो हक एक भाई का सो ही दूजे का और वही तीजे का। धनवंती से सहा नहीं गया, चुप बहू छोटा मुंह बड़ी बात, किसका क्या हक है, क्या देना पावना है, यही सिखा पढ़ा उन पापड़ गिरु ने यहाँ कूड़ा मेरे माथे मंड दिया, जानकर कि बड़े जेठ जिठानी भी पास आ खड़े हैं। फुलावंती ने गले की आवाज बदल ली और हिचकियां ले ले बोली, मुझ पर लाख जुल्म ढाओ, जो जो मन हो कहो पर उन राजाओं का नाम न लो। धनवंती ने सिर हिलाया, हाँ रे हाँ, जिन अपने सगे बाबुल भाई को राजा करके पुकारती हो उनसे भिजती अच्छे बहुरानी। मनवारी ने माँ को आगे बोलने नहीं दिया, आगे बढ़ बाह से घेर लिया, चलो अम्मा इस कलह फिसाद में अपना माथा न खपाओ, जो भीड़ हम पर बनाई है उसके लिए कोई सलाह सम्मति दो। कंधे पर रखी बेटे की मजबूत बाह छूते ही धनवंती की आंखें बरसने लगी, बेटा इस बुरी मतवाली के मुंह लग मेरी भी अकल बुद्धि मारी गई है। बेटे माँ को लिवा ले गए तो सुहागनी चूल्हे पर से भाजी की कढ़ाई उतार तवा रख दिया और छोटी देवरानी से कहा, उठ फुलावंती हाथ मुंह धो कुछ खा पी। फिर मित्रों से कहा, देवर की थाली परस ले जा बहना। देवर ने सुबह से मुंह जूठा नहीं किया, पड़ छत्ती से बर्तन उतार मित्रों ने सुहाग के आगे रखे, पर फूला को कुछ कहे बिना जी न माना। आंखों पर से देवरानी का हाथ हटा, उसे बहनापे से गले लगा लिया और लाड़ जताकर कहा, स्वांग तो तेरा भी अच्छा ही रहा फुलावंती, पर सास तुझे भिस्ती वाली चोट करारी लगा गई है। सुहाग ने एक संग हाथ आंख से भिड़क दिया, बस बस मंजली जा देवर को खिला पिला। मित्रों ने मुंह ही मुंह हंस जिठानी की ओर ताका और इठलाती कमर मटकाती घरवाले को खाना खिलाने चली। चारपाई पर बैठे सरदारी को चौंकाने के लिए मित्रों ने पांव से आहट की, बाहों से छनकार किया तो भी फिक्रों में डूबा सास का बेटा हिला डुला नहीं, तो मित्रों के जी ढेरों प्यार उमड़ आया। हथेली पर थाली टिका, पांव चारपाई की बाही पर रखा और आंखें नचाकर कहा, लो महाराज बंदी हाजिर, चाहो तो मेरी यह चिकनी चुपड़ी सौत निगल लो, न हो तो मुझे ही चबा लो। सरदारी ने अपनी कठोर आंखों से एक नजर उठाई और लौटा ली। मित्रों शरारत से और मस्की, कानों के झुमके हिलाए, तब हाथ से निवाला तोड़ सज्जन के मुंह में डाला और चंचल आंखों घरवाले को तरेर कर कहा, मौला जी मैं नहीं तो यह आग सिंकी सोतिया ही सही। मित्रों के हाथों गस्से ले ले सरदारी चुपचाप चबाता रहा तो आंखों में अनोखी अदा भर सोखी से कहा, हुक्म की बांदी हूँ चंजी, इतनी रुखाई क्यों। सरदारी लाल ने इस बार ताका भर और एक निवाला निगल लिया। मित्रों ने भूरी आंखें नचाई, मैं किस्मत जली क्या करूं, मेरा ढोल तो मुझसे बेमुख। क्षण भर को सरदारी की आंख मित्रों की ओढ़नी पर टिकी कि मित्रों इमरती बन गई। घरवाले के घुटने पर कोहनी टेकी और आंखों में आंखें डालकर कहा, रिसालदार जी सदा न रहेंगे ये रिसाले। सरदारी ने चाहा हाथ से परे ठेल दे, पर भूरी आंखों पर बालों के छल्ले देख बदन में फुरेरी सी उठ आई। ठुड्डी को छू कहा, नाटक लीला में तो तू पुतली जान से भी बढ़कर बनी ठनी। आंख के इशारों से मर्दों को नचाती पुतली जान की पदवी पर मित्रों मन ही मन फूली न समाई, पर ऊपर से गुस्सा जताकर बोली, भोले जानी उस पान चबाऊ भटियारिन से मेरी तुलना, उस फत्तों के ध्यान में मेरी अनारों की लड़ियां भी भूल गए। हिन हिन करती मजली ने घरवाले का मुंह चूम लिया और मटक कर कहा, सस्सी के पुन्नु याद रख, खांड का बतासा और नून का डला घुलकर ही रहेगा। सरदारी लाल के ओठों पर हंसी दिखी और ओझल हो गई, माथे के तेवर फिर उभर आए तो भांप। मित्रों ने आंखें झपकाई, महरम मन ही मन कोई रोग लगा रखा है, फिक्र पाल रखा है तो बताओ, ये बंदी भी बांट ले। सरदारी ने मन ही मन अपने को चेताया, पूरी फरेबन है, पर ऊपर से कहा, क्यों सिर खपाने बैठी है, मर्दों के फिक्र मर्दों के लिए। सुनकर एक बार तो जी हुआ घरवाले को एक करारी सुना चित कर दे, पर जवान पर काबू पा मित्रों बोली, महाराज जी न थाली बांटते हो न नींद बांटते हो, दिल के दुखड़े ही बांट लो। सरदारी ने सिर हिला हाथ छिटका, तेरे बस का नहीं। मित्रों ने त्योरियां चढ़ाली, मेरे बस में मेरा बांका ढोल नहीं और सब कुछ है। सरदारी ने सिर पर हाथ फेरा और लंबी सांस भरकर कहा, गुलजारी का कपट फरेब और सिर पर चढ़ा देना, उसी का फिक्र है मित्रों। मित्रों खिलखिलाकर हंस दी, लो मर गई मित्रों, महाराज जी गोता मारा पाताल और निकला थोथा घोंगा, ये तो कहो सैया है कितना। सरदारी लाल चुप बना रहा कि जवाब की जरूरत न हो। मित्रों ने इजार बंद से बंधी ताली निकाली और हाथ से उछाल कर कहा, अपने साहब जी के लिए जो इतना भी न कर सके वह मित्रों न हुई कि कंगली हुई। सरदारी ने नर्म हो कहा, भली लोग ये तेरे बस का नहीं, सौ सैकड़ों की बात नहीं, ये तो हजारों को तोड़ा है। मित्रों ने आंखों से मस्की की, एक, सरदारी ने सिर हिलाया, नहीं दो, नहीं तीन, हाँ। मित्रों ने एड़ियां उठा, पड़ छत्ती पर से टीन की संदूकची उतारी, ताली लगा लाल पट की थैली निकाली और घरवाले के आगे रख बोली, ये दमड़ी दांत परवान करो लाल जी, कौन इस नावे के बिना मित्रों की बेटी कुंवारी रह जाएगी। घरवाले को हक्का बक्का देख ओढ़नी मुंह में डाल मित्रों पहले हंसती रही, फिर सरदारी के गले में बाहें डाल दी। मित्रों के सिर की सोह, महाराज जी जो ये गुत्थी न परवानो, जी में बड़ा पछतावा लगा, चलन तो इसके बुरे पर इस पर हाथ उठाना सोहता नहीं। सरदारी लाल कई बार मित्रों को तकता रहा, फिर रुखाई से पूछा, सच सच कहेगी। मित्रों ने आंखें झपकाई, क्यों नहीं, पहले मेरी सौ। मित्रों ने मुंह बिचकाया, न न न मुझे अपनी सौ, अपनी माँ की सौ, काले चोर की सौ, पर लाल जी मैं अपने बेली सैया की सौ क्यों उठाऊं। फिर छाती पर हाथ रखकर कहा, वह तो श्वास श्वास इस बंद बटुए में रहता है। सरदारी ने जैसे सुना नहीं, कड़ी नजर मित्रों के चेहरे पर गड़ाकर कहा, जहां तहां क्यों। मित्रों ने नैन मटकाए, नहीं जी कभी नहीं, तो ये नावा कहां से समेटा है। डरकर मन ही मन कहा, जल्लाद कहीं का। ऊपर से ठगनियों सी हंसी, अम्मा के भोले भुलकड़ भूल गए, आपकी धन्नो सास की मैं इकलौती बिटिया हूँ। सरदारी लाल कुछ कहने को हुआ कि मित्रों ने बड सरबती ओठों से मुंह पर सांकल लगा दी और चुप्पे से कहा, गम की गुत्थी सुलझ गई दिलवर सैया, अब अपनी लैला की सुध लो। भाइयों की लाडली बहन पीहर क्या आई कि घर आंगन में खुशी का सूरज निकल आया। बच्ची के सिर पर प्यार का हाथ फेर गुरदास ने नाती को गोद में ले लिया और निरख फरक नए पाहुन का सिर हिलाते चले। जनको माँ जनको माँ के गले लगी, इस ओर उस ओर लाड प्यार से धनवंती की आंखें छल छला आई। लंबे क्षण तक बेटी को बाहों में लिपटाए रखा तो मजली हंसी, थोड़ा सा प्रेम प्यार हम बहुओं के लिए भी बचा रखो माँ जी। खिलखिल सती जन को खुशी बांटने भाभियों की ओर बढ़ आई। छोटी भाभी को न देख पूछा, सुख तो है अम्मा, न छोटी भाभी दिखी न गुलजारी भैया। धनवंती ने छोटी बहू को आवाज दी, फूला रानी बाहर तो निकल, बेटी तेरी नंदिया आई है। सुहाग ने जनको की पीठ पर हाथ फेरा, अरे मुनिया अपने पुराने घर का आंगन ही भूल गई। चारपाई पर बैठ जनको ने चारों ओर नजर मारी और हंसकर कहा, जहाँ तुम सी भाभी भौजैया ऐसा पीहर क्या भूला जाता होगा। मित्रों ने जनको की आंखों में झांका और झूठी तौर से पूछा, अरे हर रोज घरवाले के ढीब। जनको पहले समझी नहीं, फिर समझी तो हथेलियों में आंखें छिपा ली। फूलावंती अंदर से आई तो बाल बिखरे थे और आंखें रो रो लाल। जनको उठ गले मिली, खुशी खुशी पूछा, छुटकी भाभी, मैं तो अच्छी खबर की राह तकती रही। मंजली खिलखिलाकर हंस दी, इसकी भली पूछी नंदिया, राम का नाम ले, ये झगड़े फिसाद की पिटारी कहाँ से लाएगी अच्छी खबर। जन को कुछ कहने वाली थी कि फूलावंती धड़धड़ाती अपने कमरे में जा घुसी। असमंजस में जनको ने बड़ी भाभी की ओर देखा कि नाती को झोले में डाले धनवंती बाहर आई और बनवारी की बहू से बोली, सुहागवंती, लड़की को कुछ खिला पिला, सफर से आई है। मंजली ने ननद को आंख मारी, अरे अब थकान काहे की, तेरा जालिम तो कोसों दूर। झोले में मुन्ने को झुलाती धनवंती फिर से जवान हो गई, सिर हिला मित्रों की ओर देखा और हंसकर कहा, जनको तेरी भाभी सच कहती है, जमाई के जुल्म की निशानी तो यह रही। सभी हंस हंस दोहरी हुई। आवाज सुन अंदर से गुरदास निकले, खिले खिले चेहरे पास आन खड़े हुए तो दोनों बहुओं ने माथे तक कपड़े खींच लिए। गुरदास ने एक बार फिर बेटी के सिर पर प्यार फेरा और धनवंती से ले नाती को हाथ में झुलाने लगे। झुरियों पड़े मुंह पर जाने कहां से चमक आ गई। पकी पुरानी मूछों से ढके ओठों पर कुछ ऐसी हंसी बिखरती चली मानो दूर दूर तक कोई चिंता फिक्र न हो। जनको खा पी जल्दी आ बेटी, तेरे सास ससुर और उनके छेले लड़कों के हालचाल तो पूछें। तो इस प्रकार मित्रों मरजानी उपन्यास का ये तीसरा भाग है। प्यारे श्रोताओं, आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9680615806। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।